बीबीसी और आकाशवाणी प्रस्तुत करते हैं चलो रियो।
चलो रियो के 10वें और आखिरी अंक में अगर कर्णम मल्लेश्वरी ने 2.5 किलो वजन कम उठाया होता तब भी वो जीत सकती थी सिडनी में स्वर्ण पदक।
अगर मैं 32 करती तो भी मेरा गोल्ड था, अगर 35 करती तो भी मेरा गोल्ड था, 37 की जरूरत ही नहीं थी। 132 करने से उन दोनों से मैं बॉडी वेट में लाइटर थी।
बीजिंग में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद भी अभिनव बिंद्रा ने क्यों नहीं किया खुशी का इजहार?
I don't know what I was expected to do. I think everybody should be happy that I won the gold medal. Let's focus on that. I didn't want to. What do you want me to do? You want me to jump up and down? That.
और देखेंगे रियो में क्या बैडमिंटन में भारत के लिए आ सकता है पदक। चलो रियो में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। तब तक एवरेस्ट पर एक भारतीय महिला कदम रख चुकी थी। महिलाएं वायुसेना में हेलीकॉप्टर भी उड़ाने लगी थी। एक महिला भारत की प्रधानमंत्री भी बन चुकी थी। लेकिन किसी भारतीय महिला को ओलंपिक में पदक जीतना नसीब नहीं हुआ था। ये कारनामा अंजाम दिया श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में जन्मी कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में 69 किलो वर्ग के भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर। कर्णम मल्लेश्वरी को वो दिन अभी भी याद है जब प्रतियोगिता से एक दिन पहले उनके बेलारूसियन कोच लियोनिद तारानेन कोहे उनके कमरे में आए थे।
जिस दिन मेरा कंपटीशन था उससे पहले रात मेरे कोच आए मेरे पास, मेरे को बोला उन्होंने कि भी आपको सोना है, लेकिन एक ये होता है कि नेक्स्ट डे आपके कंपटीशन है, आपको नींद बड़ा मुश्किल से आती है, आना जरूरी है लेकिन अंदर एक जो वाइब्रेशन है या धड़कन है जो वो पल्स जो फास्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैं लेटी हुई थी एंड कुछ दूसरे प्लेयर्स थे जो वहाँ बैठ के बातें कर रहे थे, देन मेरा कोच दोबारा राउंड लेने आए तो लाइट जली हुई थी और मैं लेटी हुई थी और दो गर्ल्स से वो बात कर रहे थे, तो वो इतनी जोर से गुस्सा हो गए उनको भगा दिया वहाँ से, कह रहे तुम्हारे कॉम्पिटिशन हो गए, तुम निकलो यहाँ से, अगर सोना है तो। फिर मेरा लाइट ऑफ करके मेरा कोच चले गए। देन अगले दिन सुबह मैं उठी हूँ अर्ली मॉर्निंग, मैंने वहाँ जो विलेज है वहाँ जो फ्लावर्स है तो थोड़े बहुत फ्लावर्स निकाले हैं, अपना पूजा वीजा किया, सूर्य नमस्कार किए, भगवान से प्रार्थना की कि भी अच्छे दिन निकले मेरे, अच्छा कंपटीशन हो। बाकी जो लोग थे उन्होंने विश किया कि भी बेस्ट ऑफ लक।
कंपटीशन के दिन मल्लेश्वरी अपनी तरफ से पूरी तरह सहज होने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनके दिल के भीतर जो बीत रहा था वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वो पहली बार 69 किलो वर्ग में भाग ले रही थी, इससे पहले वो 63 किलो वर्ग में भाग लिया करती थी।
हमने ब्रेकफास्ट नहीं की थी एंड क्योंकि वेइंग बॉडी वेट देना था तो हम लोग सीधा कंपटीशन में बस में गए। इंटर बस में भी दिमाग में यही कोशिश था कि भी अपने आप को कंट्रोल करना है, कंट्रोल में रखना है, ना ज्यादा एक्साइटेड होना है ना ज्यादा नर्वस होना है, मतलब काफी ये कोशिश कर रहे थे नॉर्मल हूँ, पर अंदर तो कुछ और ही फीलिंग थी। जब एक बार वेइंग हो जाता है एंड उसके बाद फिर आप थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर जब आप किट वगैरह पहन लेते हैं उसके बाद फिर कुछ नहीं समझ में आती है, उसके बाद ना किसी की आवाज सुनाई देती है ना कोई दिखाई देता है मुझे।
उस दिन मल्लेश्वरी ने 240 किलो वजन उठाया, स्नैच में 110 किलो और क्लीन और जर्क में 130 किलो यानी अपने खुद के वजन से लगभग दोगुना। आखिरी लिफ्ट में उनके कोच ने उनसे 137 किलो वजन उठाने के लिए कहा।
दो इवेंट्स होते हैं स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क, तो जो मेरी स्टार्टिंग वेट थी स्नैच का 105 था, नेक्स्ट 107 था एंड 110, तीनों लिफ्ट मैंने कर लिया था। हंगेरी गर्ल्स जो सेकंड आई है उसने भी उतना ही किया था, चाइनीज गर्ल ने 112 किया, 2.5 kg स्नैच में हमारा डिफरेंसेस था। देन जब क्लीन एंड जर्क आया उस टाइम में जो प्ले एज ए प्लेयर मेरे को नहीं पता होता है कि मेरा कंपटीटर कितना कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन मेरा कोचेस को पता होता है कि मेरी क्या कैपेसिटी है एंड मेरा जो कंपटीटर है उसकी क्या कैपेसिटी है। मेरा जो स्टार्टिंग है वो मुझे दिया 125, जबकि मैंने थोड़ा बोला भी था कि 7 दे दो, बोला नहीं नहीं नो प्रॉब्लम। तो मैं कभी भी ऐसे प्लेयर नहीं रही कि भी आर्गुमेंट करना है ये करना है, जो कोच ने कह दिया दर्ज है ठीक है। सेकेंड लिफ्ट मेरा था 130, वो भी मैंने पास किया। कभी भी जो कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं जो लास्ट लिफ्ट होती है ना वो मैक्सिमम 2.5 kg, बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ये है तो 5 kg, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर मैं 32 करती तो भी मेरा गोल्ड था, अगर 35 करती तो भी मेरा गोल्ड था, 37 की जरूरत ही नहीं थी। 132 करने से उन दोनों से मैं बॉडी वेट में लाइटर थी। कई कहते हैं कि भी कोचेस का मिस कैलकुलेशन था, लेकिन मैं नहीं मानती ये चीज को कि भी उन्होंने कोई जानबूझकर मेरा मेडल मिस करा, क्योंकि मेरा कोचेस को ज्यादा कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, क्योंकि वो ओलंपिक रिकॉर्ड था और उनकी ड्रीम थी कि मैं ओलंपिक रिकॉर्ड करूं, एंड वो 100 दफा मैं हिंदुस्तान में करके गई थी। मैं ये मानती हूँ वो जो डे था वो मेरे लिए इतना लकी नहीं था।
कोच के मिस कैलकुलेशन की वजह से मलेश्वरी उस इवेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई, लेकिन उस प्रतियोगिता को देख रहे पत्रकार नॉरिस प्रीतम के लिए ये एक बड़ी बात थी।
जैसे ही देखा कि मेडल आया हम तो उछल गए। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये था कि जर्नलिस्ट वहाँ ज्यादा नहीं थे, क्योंकि उस दिन हॉकी का मैच चल रहा था इंडिया का, तो सारे लोग वहाँ थे, मैं था और एक कोई लड़का और था, हम दोनों अगल बगल देख रहे थे कि हम किसको गले मिलके कुछ शेयर करें ये बात बताएं, और हम कर नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही खत्म हुआ फिर मैं स्टेज पे गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, वहां पे भी पूरे दुनिया का जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, और जाने से पहले एक इंडियन मैगजीन ने कुछ लिख भी दिया था इनके खिलाफ, तो इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उनको झाड़ा था पकड़। एक खुशी के कई सबब थे, एक तो कि मेडल आया, दूसरा एक लड़की का मेडल आया, तीसरा इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैंडल करा, तो ये सारी बातें मिला के बस यही अफसोस रह गया कि हम वहां पे अपना झंडा नहीं हिला सके। जैसे एथलेटिक्स में होता है जीतते हैं तो लोग विक्ट्री लैप लेते हैं, वेट लिफ्टिंग हॉल में क्या होगा, ज्यादा इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, 2-3 बार ताली बज गई।
मैंने कर्णम मल्लेश्वरी से पूछा कि जब आपके कोच ने आखिरी अटेम्प्ट में 137 किलोग्राम वजन उठाने के लिए कहा तो क्या आप झिझकी थी?
बिल्कुल नहीं झिझकी थी, एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। मेरा कोच ने मेरे को एक ही आवाज़ सुनाई थी कि तुमको करना है, करके आना है, मेरा पूरा फोकस था। एंड आपने देखा होगा वो लिफ्ट जो है ना मेरा इतना इजी था, जो क्लीन था पानी की तरह, कोई अगर सामने से देखे तो ऐसे लगेगा कि भाई क्या है वो खेल कर, मतलब कोई प्रेशर नहीं था मेरे पे कि बहुत वजन लग रहा है या बहुत मुश्किल से उठ रही हूँ। इवन जो मेरा कोचेस है वो कहते मेरा क्लीन देखे मैं खड़ी हो गई, मेरा तो जर्क गिर गया नीचे, खड़ी हो गई तो चेनिस जो कोच था वो नीचे बैठ गया था। उनकी भी पॉलिटिक्स थी, क्योंकि जो वेट बढ़ाना था चाह रहे थे मेरा कोचेस शायद चेनिस लड़की पहले जाए, ऐसे करके पहले 32 दिया, फिर 35 दिया, वो 35 दिया तो फिर इन्होंने 37 दिया, इन्होंने 37 दिया तो उसने 140 दी, वो भी चाह रही थी कि पहले हम जाएं। आप लोगों ने देखा होगा 40 वो जाके जस्ट मजाक करके ऐसे उठा के फेंक के आ गई, कैपेसिटी था नहीं उसका इतना करने के लिए, लेकिन उसको पता था कि 2.5 kg वो लीड पे है, अगर वो प्रेशर हमारा कोचेस पे डालेगी जैसे 32 उसने 35 दिया तो कहीं ना कहीं कोचेस आता अगर ये लिफ्ट 35 कर दिया तो हमारा गोल्ड लॉस होगा। कहीं ना कहीं जो मेरा कोचेस है वो जो उनके गेम है वो कैच नहीं कर पाए, कोचेस ने कहीं ना कहीं ये था मेरा कोचेस को भी इसने किया हुआ है तो रिस्क क्यों लेना है, ठीक है 37 पे चलते हैं, उसके बाद वो नहीं गोल्ड हमारा है।
इस प्रतियोगिता में चीन की ली विंग निन को स्वर्ण पदक और हंगरी की अर्सेबेथ मार्कस को रजत पदक मिला। पदक की घोषणा होते ही नॉरिस प्रीतम स्टेज पर चढ़ गए थे।
उस वक्त जब हम बैठे हुए थे और सारा प्रोटोकॉल तोड़ के हम सब इंडियन स्टेज पे भाग गए थे और वहां पे उन्होंने बोला अभी बाकी है ठहर जाओ अभी लेकिन हिंदुस्तानी कहाँ मानते हैं, घुस गए बिल्कुल अंदर, और उन पुलिस वालों ने भी सोचा कि इंडिया में पहली बार ही किसी का ऐसा मेडल आ रहा है लड़की का, तो उन्होंने सारे रूल भी अपने ताक पे रख दिए और मतलब हम बिल्कुल जैसे कि अपने नेशनल चैंपियनशिप में घेर के खड़े हो जाते हैं इस तरह हम खड़े हुए थे वहां पे। और मतलब मुझे अब लगता है कि शायद हमने उसे डिस्टर्ब भी किया थोड़ा ना तो खाली मलेश्वरी को बाकी को भी हमने थोड़ा डिस्टर्ब किया था, लेकिन उस वक्त अपनी इमोशन को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
ओलंपिक खेलों का अगला पड़ाव था 2004 में एथेंस ओलंपिक। एक शख्स ने जिसे प्यार से चिली कहा जाता हो 17 अगस्त 2004 को 1 अरब भारतवासियों के दिलों को गर्व से भर दिया जब उन्होंने एथेंस के मार्को पोलो शूटिंग सेंटर में शूटिंग की डबल ट्रैप प्रतियोगिता में भारत को रजत पदक दिलवाया। इस शख्स का नाम था मेजर राजवर्धन सिंह राठौर। फौलादी चीवट, तेज रिफ्लेक्सेस और गजब के किलर इंस्टिंक्ट ने राजवर्धन सिंह राठौर को विक्ट्री पोडियम पर ला खड़ा किया। अगले दिन सुनील वारियर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा,
क्वालिफिकेशन राउंड में 5वें स्थान पर रहे मेजर राजवर्धन सिंह राठौर ने न सिर्फ ग्रीस में तेज बहने वाली हवा मेलेटमी का मुकाबला किया बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों और खुद अपने आप से लड़ाई कर भारत को रजत पदक दिलवाया। पदक मिलने के बाद भी राठौर का चेहरा भाव रहित था, उनके मुंह से बस ये निकला कि अब मैं चिंता मुक्त हूं कि भारत ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रहा है। राठौर ने बताया कि मैंने सिर्फ एक बार स्कोर बोर्ड की तरफ देखने की गलती की थी, फिर मैंने अपने आप को कोसा कि मैं अपना ध्यान क्यों भंग कर रहा हूं। आखिरी शॉट के बाद जरूर मैंने स्कोर बोर्ड की तरफ देखा, वहां मुझे अपना नाम दूसरे नंबर पर लिखा दिखाई दिया।
आकाशवाणी और बीबीसी की पेशकश चलो रियो, मैं हूं रेहान फदल। और अब जिक्र अभिनव बिंद्रा का। अभिनव जब अपने तीसरे ओलंपिक में भाग लेने बीजिंग पहुंचे तो उनकी दुनिया में रैंक 17वीं थी। उनसे पहले उनसे कहीं ज्यादा रेट किए जा रहे अंजलि भागवत, मानवजीत सिंह संधू और मनशेर सिंह मुकाबले से बाहर हो चुके थे। अभिनव ने जब फाइनल में प्रवेश किया तो उनका स्थान चौथा था, लेकिन वहीं उन्होंने अपने प्रदर्शन को एकदम उठा दिया। पहले शॉट ने उन्हें 10.7 अंक दिलाए और वो तीसरे स्थान पर जा पहुंचे। बिंद्रा जब चौथा निशाना लगा रहे थे तब तक वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुके थे। सातवें शॉट पर जब उन्हें 10.6 अंक मिले तो उन्होंने लीड ले ली। आखिरी शॉट के लिए अभिनव ने जब निशाना लिया तो पूरे भारत की एक ओलंपिक स्वर्ण पदक की भूख उस क्षण विशेष में समाहित हो गई। कुछ सेकेंड बाद जब स्कोर बोर्ड पर 10.8 फ्लैश हुआ और ये तय हो गया कि बिंद्रा ने भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया है, तब भी उनकी भाव भंगिमा में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मुट्ठियों को भीजकर धीरे से हिलाया और बहुत मुश्किल से एक मुस्कान उनके चेहरे पर आ पाई। वहां मौजूद कुछ भारतीय पत्रकारों को ये थोड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने इसके बारे में उनसे पूछ ही लिया। अभिनव बिंद्रा का जवाब था,
I don't know what I was expected to do. I think everybody should be happy that I won the gold medal. Let's focus on that. I didn't want to. What do you want me to do? You wanted me to jump up and down?
मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या उम्मीद की जा रही थी। मैं समझता हूँ कि हर एक को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैंने स्वर्ण पदक जीता। क्या आप मुझसे चाह रहे थे कि मैं स्वर्ण पदक जीतते ही कूदना शुरू कर देता? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझ में अपने प्रतिद्वंदियों के लिए सम्मान है। उन्होंने भी उतनी मेहनत की है जितनी मैंने।
पदक पाते ही बाहर आते ही भारतीय शूटर्स का पूरा दल अभिनव की तरफ भागा। कुछ भारतीय निशानेबाज अपने गमों को भुला चुके थे, कुछ की आंखों में जग गई थी नई उम्मीदें। गगन नारंग फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते करते रह गए, उन्हें नवा स्थान मिला, लेकिन अभिनव के पदक ने उनमें भी नया उत्साह भर दिया।
मेरे से ज्यादा अभिनव काफी अच्छा कर गए एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड। ही प्रूव्ड ही वाज वर्ल्ड चैंपियन, रह चुके हैं अभिनव और अब ओलंपिक चैंपियन, तो भारत के लिए आई थिंक शूटिंग की दुनिया अभी काया पलट जाएगी इस गोल्ड से।
अभिनव बिंद्रा जब निशाना साध रहे थे तो दर्शक दीर्घा में सबसे आगे बैठे थे 1978 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले शूटर और भारतीय ओलंपिक संघ के उस समय के महासचिव रणधीर सिंह।
ये जो एक दफा जो शुरुआत हुई है, जो हमारे लोगों के दिमाग में था कि कोई ऐसा कोई जिंक्स बैठा है कि जिस कारण हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, वो आज शूटिंग ने और अभिनव बिंद्रा ने कर दिखाया कि ये चीज पॉसिबल है। और मेरा दिल ये कहता है कि जो हिंदुस्तान का जो खेल है सारा सिस्टम बदल जाएगा।
रणधीर सिंह के साथ मशहूर खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम ने भी उस दिन इतिहास बनते देखा।
हम सब जैसे जर्नलिस्ट एक लाइन में बैठे हैं, उसके हमारे पीछे जो थे अंजलि भागवत और ये लड़कियां सीमा शरोड़ वाला लड़कियां सारी शूटर्स बैठ, और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर क्रॉस, हम सब ऐसे करके वहां बैठे हुए थे। और ये कि कभी भी उस मेडल आएगा चिल्लाएंगे, क्योंकि हमें चिल्लाने का मौका, ताली बजाने का मौका नहीं मिल रहा था। और जैसे ही मेडल आया वहां पे जोर जोर से हम सब जो पूरा, मेरे ख्याल हॉल में सिर्फ इंडियंस ही बैठे थे। और उस वक्त मैंने अचानक लगा मुझे कि मेरे को जरा आंसू आ रहे हैं देख के, वो फीलिंग जो झंडा ऊपर जब चढ़ रहा था। और मैंने सोचा कि मैं आंसू पूछूं तो देखा मैंने राइट लेफ्ट सेंटर जो थे सारे रो रहे थे वहां पे, सिर्फ मैं नहीं था। तो ये बड़ी जबरदस्त फीलिंग थी। और उस झंडे को देखकर बिल्कुल अटेंशन खड़े हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं जब झंडा ऊपर जा रहा था, नेशनल एंथम बज रही थी और एक बहुत बड़ा फव्वारा था जो खाली सजावट के लिए था, इसमें पानी आ रहा था और कमल के फूल वगैरह थे। थोड़ी गर्मी भी थी तो मैं और विमल मोहन थे NDTV के और कुछ लोग थे, हम सीधे कपड़े समेत वॉलेट अपने जेब में, हम सब खड़े हो गए पानी में, हम जोर जोर से नहाए। सारे लोग पूछ रहे हम पे फिल्म बना रहे कि क्या हो गया, हमने इंडिया का मेडल आया ये गोल्ड मेडल, हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे। उसके बाद मैं और गगन नारंग बाहर सड़क पे पतंग उड़ा रहे थे हमारे किसी की लेके। तो ये बहुत एक अच्छा क्षण था कि मुझे बहुत लगा कि मैंने सिल्वर देख लिया, मैंने ब्रॉन्ज देख लिया और अब बीजिंग में आके मैंने गोल्ड भी देख लिया। मेरे को लगा कि ये गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा का या भारत का नहीं बल्कि मेरा अपना आया, ये फीलिंग थी।
जिस समय अभिनव बिंद्रा अपना स्वर्ण पदक ले रहे थे, हमारे एक सहयोगी ने भारत में चंडीगढ़ में टेलीविजन सेट के सामने बैठी अभिनव की माँ बबली बिंद्रा से पूछा कि अपने बेटे की इस उपलब्धि पर आप कैसा महसूस कर रही हैं?
बहुत खुशी का माहौल है और बहुत गर्व की बात है कि हमारे अभिनव ने इंडिया का नाम रोशन किया है। अब इस समय हम इस चीज को सिंक इन हो रहा है कि इट इज आर अभिनव हुज क्रिएटेड हिस्ट्री। जब वो लेन फोर में क्वालिफाई किया था तो सेम स्कोर था लेन थ्री और लेन फोर का, तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि अभिनव मेडल तो लेगा और कलर ऑफ द मेडल आई वॉज नॉट श्योर। तो जैसे जैसे इसकी बड़ी कंसिस्टेंट फाइनल शॉट्स जाते गए, जब ये दोनों टाई कर गए 8th एंड 9th शॉट में, फर्स्ट एंड द सेकंड पोजीशन दोनों का सेम स्कोर था, देन आई न्यू इट वाज गोइंग टू बी अभिनव। वो बहुत सीधा सिंपल लड़का है, वो ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता, इसलिए वो कहने लगा आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा हम मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, तो कहने लगा आर यू क्रेजी। उसने अपने डॉग्स के बारे में पूछा तो कहता अच्छा मैं फिर बाद में बात करूँ।
बिंद्रा का फाइनल स्कोर था 700.5। एथेंस में अभिनव ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन वो सिर्फ सातवां स्थान ही प्राप्त कर सके थे। बाद में उन्होंने एक मशहूर जुमला बोला था, शूटिंग 99% भाग्य है और 1% ट्रेनिंग। उस 1% के लिए अभिनव बिंद्रा ने महीनों तक 7 घंटे शूटिंग अभ्यास और 2 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग ली थी। इस उपलब्धि के तुरंत बाद हमने बात की अभिनव बिंद्रा के पिता अभिजीत बिंद्रा से।
देखिए वो पिछले 14 साल से ये शूटिंग कर रहा है, इस शूटिंग में अप्स एंड डाउन बहुत हुए, इट्स जस्ट लाइक अ सेंसेक्स, पर उसने बहुत अचीव भी किया, वर्ल्ड चैंपियन बना। पिछले ओलंपिक्स में वो जीता जीता हार गया, वो तब भी वो मेडल ले जाता, क्योंकि जिस फ्लोर पे वो खड़ा था वो फ्लोर वॉज वॉबलिंग, ये दुनिया ने आज एक्सेप्ट किया, इट वॉज अ फॉल्टी फ्लोर। उस वक्त आदमी ने अलार्म नहीं किया, जब खड़ा है तो उसी वक्त वहाँ ऑब्जेक्शन उसी वक्त देना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसके अंदर कितनी चीज उसके दिमाग में गई कि भाई मैंने जीतता हुआ भी मैं हार गया हूँ, उसके अंदर लक्ष्य था कि मैं एक ओलंपिक मेडल जीतूं, गोल्ड, क्वेस्ट फॉर गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज गोल्ड।
बीजिंग में भारत को 2 कांस्य पदक भी मिले और दोनों एक ही दिन आए। सुशील कुमार ने 66 किलो वर्ग में कांस्य जीता तो विजेंद्र सिंह ने मिडिल वेट क्वार्टर फाइनल में इक्वाडोर के कार्लोस गंगोरा को हराया। मुकाबले के तुरंत बाद विजेंद्र सिंह ने बीबीसी से बात की।
या रियली फिगर माय कोच की जो प्लानिंग थी वो काम आई स्पोर्ट में भी, मैं पहले एग्रेसिव उसके बाद ऑफेंसिव का भी प्लानिंग, बिकॉज उसका मैंने वॉच राइट वॉच किया था, उसका मेन पॉइंट राइट के ऊपर था और राइट को मैंने एक भी नहीं लिया, उसके ऊपर फोकस करके मैं राइट से बच के राइट का काउंटर किया मैंने।
अगले दिन एक भारतीय अखबार की हेडलाइन थी हैवी मेटल डे फॉर इंडिया। 2012 के लंदन ओलंपिक में तो जैसे पदकों की बाढ़ आ गई, स्वर्ण पदक तो नहीं मिला लेकिन भारत ने 6 पदक जीते, 2 रजत और 4 कांस्य। 16 डोगरा रेजिमेंट के विजय कुमार 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक लाए। सुशील कुमार ने जब कजाकिस्तान के अगजुरेक तंत्रारोव को कंधे पर उठाकर मैट पर पटका तो खचाखच भरे स्टेडियम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
The reversal comes from Kumar. He was able to counter attack and despite oh here we go, he lifts him, he brings him down on his front side for another point and there is blood from Tanatarov.
लेकिन लंदन की सबसे बड़ी याद थी जब योगेश्वर दत्त ने उत्तरी कोरिया के जोंग म्योंग री को 4 बार रोल कर न सिर्फ 1 साथ 6 अंक लिए बल्कि भारत के लिए कांस्य पदक भी जीता। लंदन ओलंपिक कवर कर चुके नॉरिस प्रीतम बताते हैं।
वो उनका बड़ा फेवरेट दांव है, वो हमेशा वही लड़ते हैं। एडलिन ग्रे जो 3-time वर्ल्ड चैंपियन है यूएस की लड़की महिलाओं की, उनका भी वही दांव है, वो भी रोल करती हैं और इसी तरह पकड़ती हैं। उन्होंने खुद बताया मुझे कि मैं योगेश्वर की तरह ही हूँ।
Wraps the legs up and he'll be turning. He's turning him. He's turned him once. Really trying to fight back. This could be the moment the bronze medal is won and lost. He turns him again and again and again and that's it. 6 points.
Excelerina में भारत की मैरी कॉम ब्रिटेन की निकोला एडम्स के मुक्कों के सामने कमजोर दिखी, लेकिन तब भी कांस्य पदक जीतने से उन्हें कोई नहीं रोक पाया। शाम को लंदन के मशहूर हाइट पार्क में वहां रहने वाले मणिपुरी मूल के लोगों ने उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया।
हाइट पार्क के पास लंदन में कुछ एक बहुत बड़ा अच्छा एक पब था जहाँ पे मेरी कॉम को सारी लेके लोग आए और मेरी कॉम ने मुझे खास तौर से मुझे बोला कि तुम जरूर आना, वहाँ पे बड़ा मजा रहेगा। और वहाँ पे असली रूप मेरी कॉम का देखने को मिला। लोगों को तो दिखता है खाली फाइट करती है, बट वो जिसे कहना चाहिए ना बिल्कुल एक जोकर की तरह है उनकी, जो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए पर्सनैलिटी। वहाँ खूब गाने गाए उन्होंने, डांस करा अपने मणिपुरी लोगों के साथ, खूब जोक सुना सुना के, मतलब उन्होंने पूरी एसोसिएशन को एकदम से पागल कर दिया था वहाँ। तो उनको ये एक ऑनर दिया गया कि क्लोजिंग सेरेमनी में वो भारत का झंडा लेके चले। तो मुझे लगता है एक मणिपुर से छोटी सी जगह से आने वाली एक लड़की अगर मेडल लेके भारत का नेतृत्व लंदन में करे तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
चलो रियो, आकाशवाणी और बीबीसी की प्रस्तुति, मैं हूं रेहान फजल। ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार बैडमिंटन में रियो में भारत के 7 खिलाड़ी दिखाई देंगे। इनमें लंदन ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल उम्मीदों का केंद्र बिंदु होंगी। इनके अलावा महिला एकल में पीवी सिंधु और पुरुष एकल में के श्रीकांत भी पदक जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं। मलय नीरव की रिपोर्ट।
केवल एक ही खेल ऐसा है जिसमें 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक से लेकर 2012 के लंदन ओलंपिक तक लगातार भारत के खिलाड़ियों ने अपने अपने दावे पेश किए और वो खेल है बैडमिंटन। पहली बार 2012 में पदक मंच तक पहुंची साइना नेहवाल जब उन्हें कांस्य पदक मिला। एक बार फिर रियो में दिखेंगी प्रतियोगिता में 5वीं वरीयता प्राप्त करने वाली साइना और उनके साथ होंगे भारतीय बैडमिंटन जगत के 6 और जगमगाते सितारे। महिलाओं के एकल वर्ग में साइना के अलावा विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पीवी सिंधु भी दिखेंगी रियो के बैडमिंटन कोर्ट्स पर, जिन्हें खेलों के इस महाकुंभ में 9वीं वरीयता दी गई है। तो महिलाओं के डबल्स में पदक पे नजर होगी विश्व चैंपियनशिप में कांस्य और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी की, और पुरुषों के डबल्स में दिखेगी मनु अत्री और सुमित रेड्डी की जोड़ी, और पुरुषों के एकल वर्ग में भी पेश होगी दमदार चुनौती किदंबी श्रीकांत की ओर से, जिन्हें रियो ओलंपिक्स के लिए पीवी सिंधु के समान ही 9वीं वरीयता दी गई है। भारतीय बैडमिंटन में नई जान डालने वालों में प्रमुख है नाम पूर्व खिलाड़ी और भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच पुल्लेला गोपीचंद का, जिन्हें उम्मीद है कि इस बार पदक मंच तक पहुंचेंगे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी।
मैं मानता हूँ कि सारे मेंबर्स जो स्क्वाड में हैं सभी को मेडल का एक मौका है। इस बार जितने प्लेयर्स क्वालिफाई हुए वो काफ़ी अच्छा रहा है, और डेफिनेटली उम्मीद है कि पिछले से अच्छा हमारी परफॉर्मेंसेस रहेंगी।
बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत निस्संदेह सबसे मजबूत मानी जा रही है दावेदारी साइना नेहवाल की, जिन्होंने गहरी चोट से उबर कर रियो से ठीक पहले अपनी झोली में डाला है ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब।
I had one severe injury in my Achilles and I came out of it. Finally, I'm very happy because there is this important tournament coming up in August, Olympics. So everyone is looking forward to that. And I was really wanting a victory so that I get the confidence to play against all these top players.
साइना कह रही थी कि 2 महीने तक गंभीर चोट से जूझने के बाद टूर्नामेंट जीतकर रियो जाने से पहले उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। क्या सचमुच साइना है पदक की पक्की दावेदार? क्या कहते हैं पुल्लेला गोपीचंद?
I think definitely जिस तरह से पिछला टूर्नामेंट में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्होंने जीता है उसमें ये बताया कि शी इज केपेबल ऑफ विनिंग द बिग टूर्नामेंट्स, और दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड शी विल हैव डेफिनेटली कंपटीशन फ्रॉम अदर्स, बट शी इज समबडी होम वी कैन एक्सपेक्ट अ मेडल।
और पदक जीतने की अपनी भूख को छुपाए बिना साइना खुद कहती हैं कि हर खिलाड़ी का सपना होता है पदक जीतना ओलंपिक में। मगर तगर है कठिन ओलंपिक के पदक मंच की।
Every player who is playing Olympics has a dream of one thing, to win a medal. I am one of them, but it's not easy. I hope to come back with the medal, but I know it's not going to be easy. I'll try my best.
एक और ओलंपिक पदक के साथ रियो से वापस लौटना चाहती हैं साइना नेहवाल, मगर जानती हैं कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। महिलाओं के एकल वर्ग में ही चुनौती पेश करेंगी पीवी सिंधु भी, जो पहली बार उतरेंगी ओलंपिक कोर्ट्स पर। तो कितनी कठिन है चुनौती उनके लिए और किस किस के साथ होगी उनकी कड़ी टक्कर?
मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स है, रियली वेरी एक्साइटेड। ऐसा कुछ इजी नहीं है, पहले राउंड से बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड में टॉप प्लेयर्स ओलंपिक्स खेलते हैं, तो उनमें से यू कांट से दैट ओके दिस पर्सन इज टफ और दिस पर्सन इज टफ।
महिलाओं के युगल खिताब के लिए कोर्ट पर अपने ही देश की खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा के साथ जोड़ी बनाकर उतरने वाली ज्वाला गुट्टा को अपने जोड़ीदार पर पूरा भरोसा है।
यू नो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह भी जानते हैं, पहचानते हैं। कोर्ट में भी यू नो एक दूसरे को हम संभाल सकते हैं, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत मेहनत भी की है।
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और विशेष टूर्नामेंट में पुरुषों के एकल में भारत के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश करेंगे 2014 में चाइना ओपन जीतने वाले किदंबी श्रीकांत भी, जिनके 2016 के आरंभ में ही सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय ग्रांप्री खिताब जीतने के बाद साल बहुत अच्छा तो नहीं रहा, मगर ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद रियो में नौवीं वरीयता प्राप्त करने के कारण उन्हें बेहतर ड्रॉज मिलेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं। पूर्व एशियाई बैडमिंटन चैंपियन दिनेश खन्ना कहते हैं कि रियो से पहले श्रीकांत का मनोबल बढ़ा हुआ है, खेल बेहतर हुआ है।
वो पहले या दूसरे राउंड से आगे नहीं जा पा रहे थे, तो इसमें वो सेमीफाइनल तक पहुंचे और उन्होंने दो अच्छे खिलाड़ियों को पराजित किया, उसके बाद सेमीफाइनल में प्रवेश किया उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि ये उनके मनोबल के लिए, आत्मविश्वास के लिए भी बहुत अच्छा होगा ओलंपिक्स के पहले।
पुरुषों के एकल वर्ग में मजबूत चुनौती पेश करने की तैयारी में जुटे हैं श्रीकांत, और पुरुषों के युगल में रियो के बैडमिंटन कोर्ट्स पर दिखेगी मनु अत्री और सुमित रेड्डी की जोड़ी, जिससे पदक की बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगाई जा सकती, मगर ओलंपिक्स में पहुंचकर जिस नई ऊर्जा का संचार होता है प्रतिभागियों में, उसे देखते हुए निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है कि भारत के सात बैडमिंटन खिलाड़ियों के रैकेट्स जब चमकेंगे, तब पदक मंच तक एक से ज्यादा खिलाड़ियों के पहुंचने की पूरी संभावना होगी।
चलो रियो की 10वीं और आखिरी कड़ी में इतना ही। आज से एक हफ्ते बाद ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में खेलों का महाकुंभ ओलंपिक शुरू हो रहा है। भारत ओलंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। देखना है क्या भारत ओलंपिक में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर पाता है या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के 120 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं होंगी इन खिलाड़ियों के साथ। रेहान फदल को चलो रियो से इजाजत दीजिए। नमस्कार। रियो डी जनेरो।